च कल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तुम्हारे आज के अध्याय 3 श्लोक संख्या भी 3, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग दोहरा सकते हैं। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनां। तो अभी हम इसके अर्थ पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में अस्मिन् इस द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा श्रद्धा है। पुरा पहले प्रोक्ता कही गई मेरे द्वारा, अनग हे निष्पाप ज्ञान योगेन ज्ञान के ज्ञान योग के द्वारा, संख्या नाम ज्ञानियों का, कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा, योगी नाम भक्तों का। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान से दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? और दूसरा प्रश्न पूछा, आपके व्यामी आश्रित अनेक अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा। तो भगवान ने दो रास्तों की चर्चा करी, एक संख्य योग और एक कर्म योग। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरी बुद्धि क्या हो गई है, भ्रमित हो गई है, मोहित हो गई है, समझ नहीं आ रहा कि मैं किस प्रकार से कौन से मार्ग को अनुगमन करूं। तो भगवान ने कहा यहाँ पर संसार में दो प्रकार के विधियां हैं। पहला है ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानियों, संख्या योग मतलब जिसे कहते हैं सांख्य योग, और फिर दूसरा है कर्म योग, योगी नाम, जो कि भक्तों के द्वारा कहता है। तो यहाँ पर समझने पूर्वक काफी सारी चीजें इसके अंदर हैं, तो विशेष हम चर्चा करेंगे। पहला सांख्य योग क्या होता है, जिसकी चर्चा हुई है, और दूसरा कर्म योग क्या होता है। तो सांख्य योग जिसकी चर्चा यहाँ पर है, उसके लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सांख्य योग मतलब संख्या पूर्वक शास्त्रों के अंदर से हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि हम कौन है और आत्मा कौन है। जैसे सांख्य योग के द्वारा हम समझ पाते हैं आत्मा का साइज क्या है, क्या है साइज, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है कौन? आत्मा। ये ज्ञान किसके द्वारा आता है? सांख्य योग के द्वारा। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या मैं बस इसी ज्ञान को प्राप्त करने में अपना जीवन गुजार दूं, या फिर कर्म योग कि मैं जीवन में कर्म ही करता रहूं। आज जैसे लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, तो भगवान यहां पर कहते हैं कि कर्म पूजा नहीं है, कृष्ण भावना भवित कर्म पूजा है। क्योंकि तीन प्रकार के कर्म है, अकर्म, विकर्म और सकर्म। सकर्म होता है जब काम शास्त्रों के अनुसार किया जाए, है ना, कोई भी शास्त्र के अनुसार कार्य किया जाए तो सकर्म, जब शास्त्रों के विपरीत किया जाए विकर्म, लेकिन जब भगवान के लिए किया जाए अकर्म। लेकिन अकर्म शब्द से ऐसा लगता है सुनने में, अकर्म मतलब कि कुछ नहीं करना, खाली हाथ बैठ जाना, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी कोई आत्मा अकर्म कोई काम ना करके बैठ जाए, क्योंकि सोल इज एन एक्टिव आइडेंटिटी, ये एक्टिव है, कभी इनएक्टिव होकर बैठ नहीं सकती। अगर कोई भक्त भी बन जाएगा, सब कुछ छोड़कर मंदिर भी आ जाएगा, तो मंदिर में विग्रह की सेवा करेगा, माला जप करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, भोग लगाएगा, क्लीनिंग करेगा, तो नॉन एक्टिव कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन वो एक्टिविटी हमें देखना है कि अपने लिए लगानी है या कृष्ण के लिए लगानी है। कहते हैं ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम भक्तिर उत्तमम, सबसे उत्तम भक्ति वही है जो ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी, उनकी सेवा में हम अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तो ये दोनों प्रकार की निष्ठा बताई गई है। लेकिन अर्जुन ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि सांख्य योग और कर्म योग ये दो रास्ते नहीं है, ये सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी। सीढ़ी में क्या होता है? नास्तिकवादी, उसके ऊपर की सीढ़ी आती है कौन सी? सांख्य योग, ज्ञान योग जिसे कहते हैं, ज्ञान के द्वारा आत्मा को समझने का प्रयास करना। उसके बाद कर्म योग, उसके बाद में निष्काम कर्म योग, उसके बाद में शुद्ध भक्ति योग। तो ये सीढ़ी है, लैडर, इसको बोलते हैं योगा लैडर। इसमें कई प्रकार की योग सिद्धि बताइए किस प्रकार से भगवान से जुड़े, संख्या से भगवान से जुड़े मतलब ज्ञान के द्वारा, या फिर कर्म के द्वारा। तो कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म होता है जब मैंने कोई कर्म किया तो मैं कर्म के फल से आसक्त हूं। निष्काम क्या होता है? कि मैंने कर्म तो किया लेकिन कर्म के फल से आसक्त नहीं। लेकिन क्या निष्काम कर्म योग पूर्ण भक्ति योग है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप कर्म से आसक्त हैं, कर्म से भी आ सकती। सकाम कर्म में क्या है? कर्म से भी आ सकती है, फल से भी आ सकती है। जैसे उदाहरण स्वरूप, यहां पर किसी को बोला जाए कि आप ना कीर्तन करिए, अब उसकी कीर्तन की प्राय इच्छा नहीं है, उसकी आवाज अच्छी नहीं है, उसने कोई रियाज नहीं किया, सुर आदि कुछ ठीक नहीं है, तो आया वो भगवान की सेवा करने के लिए और कीर्तन करने लगा, तो उसने अपनी इच्छा के विपरीत कार्य किया। किसके कहने पर? सीनियर डिवोटीज या फिर वैष्णवास या फिर अथॉरिटी के कहने के अनुसार। लेकिन एक व्यक्ति है, उसने मना कर दिया, नहीं जी कीर्तन वीर्तन तो अपने बस की बात नहीं जी, उसकी इच्छा जुड़ी हुई है सेवा में भी, मुझे ना आप वाली दे दो, वो जो है ना प्रसाद बांटने वाली, वो मैं कर लूंगा आसानी से। इट मींस सकाम, उसका काम सेवा करने में भी उसकी इच्छा जुड़ी हुई है, और उसके बाद में उसका फल भी जुड़ा हुआ। या तो उसके मन में आएगा कि मुझे बाद में ना तारीफ मिलेगी कि ना आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छे भक्त हैं, या फिर मन में ये आएगा कि भगवान की मैंने आज सेवा करी है, तू एक रुपया दे तो मैं 10 लाख दूंगा, तो मैंने आज एक सेवा करी है तो भगवान मेरी सेवा कर देंगे, भगवान की भावना इच्छा है। तो मतलब वो कर्म के प्रति भी जुड़ा हुआ है, आसक्त है, और फल के प्रति भी। ये है सकाम कर्म योग। निष्काम कर्म योग, कर्म तो मुझे अच्छा लगता है, देखो भाई मैं तो ना कथा करूंगा, मैं प्रवचन दूंगा, मैं से ना ये दाल चावल बनेगा नहीं, जुड़ा हुआ हूं, लेकिन फल से निराशित हूं। इसके बाद में कोई मुझे मेरी बातों को स्वीकार करेगा नहीं करेगा, मूवमेंट में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, अनासक्त। तो ये हो गया निष्काम। शुद्ध भक्ति योग क्या है? जो भी मैं नहीं चाहता हूं वो भी मुझे करने के लिए बोला जाता है, और मैं उसको करने के लिए तत्पर रहता हूं, उसी प्रसन्नता से उस काम को करता हूं जिस प्रसन्नता से मैं अपना इच्छुक कार्य कर रहा हूं। अब किसी को ताली बजाना, नाचना, कीर्तन करना, ये स्वतः अच्छा लगता है ना, जैसे प्रभु जी माता जी भी कीर्तन कर रहे थे, इनको अच्छा लगता है, सोई नहीं कर रहा, हमने उठा के करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी जिसे नहीं अच्छा लगता उसको दे दिया जाए, जिसको करताल की ध्वनि नहीं आती है, तो क्या वो उतने स्वभाव से कर पाएगा? उसको क्यों नहीं करता है कोई व्यक्ति? उसको ये लगता है कि अगर मैं बेसुरा बजाऊंगा तो लोग मुझ पर
इसका मतलब फल से आ सकता है और कर्म से भी आ सकता है, तो वही सकाम कर्म योगी भी नहीं है वो, सोचो आप। तो ये बता रहे हैं सांख्या योग के ऊपर कर्म योग, कर्म योग में भी सकाम कर्म योग, सकाम के भी ऊपर निष्काम कर्म योग, निष्काम के भी ऊपर भक्ति योग। भक्ति योग में तो भाई मेरे को है ना कुछ भी दे दो बजाने के लिए, अगर कृष्ण प्रसन्न होते हैं ना और लोग मुझे बाद में थप्पड़ मारते डंडे मारते हैं और टांगों से क्या क्या कितना गंदा बजाता है तू और पिट रहा हूं मैं, लेकिन कृष्ण प्रसन्न हो रहे क्योंकि मैंने उनके कहने अनुसार किया है, ये भक्ति योग है। और इस भक्ति योग के कई उदाहरण है, इसमें भगवान कहते हैं लोक अस्मिनिम द्विविधा निष्ठा, बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कृष्ण ने, निष्ठा। निष्ठावान भक्त पता कैसा होता है, ये बहुत ऊंचा स्तर है निष्ठा का। कहते हैं रूप गोस्वामी आदो श्रद्धा, पहले तो व्यक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए। अब आप लोगों में श्रद्धा है जो हर मंगलवार को आ जाते हैं काम को छोड़ के अपने, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, उसके बाद साधुओं का संग, आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। फिर साधु बोलते हैं आप जप किया करो, गीता पढ़ा करो, शास्त्र पढ़ो, भजन क्रिया। भजन करने से क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छह प्रकार के अनर्थ निवृत्ति, ये सब निकल जाएंगे। फिर क्या आता है, फिर कौन सा लेवल आता है पता है, निष्ठा। तो भगवान जिसकी बात कर रहे हैं निष्ठा की बात कर रहे हैं। तो ये निष्ठा का सार बहुत आसानी से नहीं आता है, क्योंकि जब तक काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से मुक्ति नहीं हुई कोई व्यक्ति कैसे निष्ठावान भक्त बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर वो निष्ठावान नहीं बना तो सही से सकाम कर्म योगी निष्काम कर्म योगी भी नहीं बनता, तो बहुत ही नीचे रह गए हम। तो अभी तो हमको बहुत ऊपर जाना है और हम थोड़ा सा भजन करने लगते हैं, हम सोचते हैं हम तो भक्ति योगी है, बहुत ऊंचे स्तर पे है। हमारा भक्ति योग अभी शुद्ध भक्ति योग नहीं है, उसमें बहुत सारी अशुद्धि है। कई बार उसको मिश्रित भक्ति भी कहा जाता है। मिश्रित भक्ति मतलब जैसे दूध के अंदर चीनी भी है और थोड़ा बॉर्नविटा या कोई और कॉम्प्लान मिला दिया, तो क्या वो प्योर दूध है, उसमें क्या है मिश्रित। या फिर दूध में पानी मिला दिया दिखाई भी नहीं दे रहा लेकिन वो क्या है, मिश्रित भक्ति। ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति तो करते हैं पर मेरे मन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं चलती हैं, संसार के लोग मुझे है ना मेरे को माने कि मैं भक्त हूं, या फिर मैं जो हूं भजन करने लगा हूं लेकिन भजन करने से भगवान मेरी कहीं भी ऐसी इच्छा नहीं है जो कि आप मेरा सब कुछ छीन ले। भगवान कहते हैं हरि का मतलब दो है, एक हरि का मतलब है हरिश्यामी अहम सर्वम, मैं सब कुछ हरण करता हूं। भौतिक संसार के लोग मानते हैं हरि का मतलब दुखों को हरने वाले, भक्त जानते हैं हरिश्यामी अहम सर्वम मतलब जो भी चीज मेरी भक्ति में बाधा बनेगी उसको हरण करने वाले हरि है। अगर भजन करने में मेरा ऐश्वर्य मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा डेजिग्नेशन अगर बाधा है और हरि उसको ले ले कितने लोग दे देंगे उसको, नहीं दे पाएंगे, बहुत मुश्किल। तैयार है क्या? तो ये मिश्रित भक्ति है, इसलिए जब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगी कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। आपको उनके घर पे जाना है गोलोक धाम, हर व्यक्ति बोलता है बस संसार से मुक्ति चाहते हैं भगवत धाम जाना चाहते हैं, इतने लेक्चर सुन लिए 3 साल से, बहुत सारे इस्कॉन में लेक्चर सुने, टीवी में सुने, पढ़े आर्टिकल्स, गीता पढ़ा। भगवान के घर जाने के लिए भगवान के क्वालिफिकेशन होने चाहिए। एक जगह पर अगर वॉल्केनो फट रहा हो, वॉल्केनो देख जानते हैं आप लोग ऐसे वॉल्केनो फटता है तो वहां पर जाने के लिए एक विकार का कपड़ा पहना जाता है, क्या कपड़ा होता है, एस्बेस्टस, परफेक्ट, एस्बेस्टस नाम का है, एक कपड़ा पहना जाता है जिसको पहन करके वॉल्केनो के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो एस्बेस्टस का कपड़े के ऊपर वॉल्केनो के जो लावा होते हैं बड़े भारी भरकम जलाने वाले, जो कि शरीर की उंगली पर अगर उसका लावा टच हो जाए तो उंगली ऐसे निकल जाएगी जैसे मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे ऐसे अलग हो गई। इतना गर्म लावा शहर पे जब गिरता है तो पूरी पूरी बस्तियां खत्म कर देता है वॉल्केनो, वो ज्वालामुखी फट जाता है पूरा। तो जब ज्वालामुखी में प्रवेश करने के लिए, छोटे से ज्वालामुखी में प्रवेश करने के लिए एक प्रकार के कपड़े की आवश्यकता है, तो कृष्ण के धाम में प्रवेश करने के लिए एक प्रकार के कपड़े की आवश्यकता नहीं। वो कौन सा कपड़ा, ये कपड़ा तो है नहीं, ये वाला, ये तो यहीं छूट जाएगा, सब लोग राम नाम सत्य करके जला देंगे, हरी हरी करके हरे कृष्णा, तो गया क्या। तो आत्मा के ऊपर जो कवरिंग है वो कवरिंग कैसी होनी चाहिए, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति में कृष्णमय होना चाहिए उसको, तभी तो प्रवेश करेंगे। हमारे घर में कोई आता है, आप नॉनवेज नहीं खाते हो और आपके घर में कोई आया और वो नॉनवेज खाना चाहे तो क्या आ सकता है आपके घर में? तो इसका मतलब आपके एक साधारण से भौतिक घर में भी एक नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। कृष्ण लोक में कोई आदमी कैसे छल कपट करके प्रवेश कर जाएगा। प्योर शुद्ध, जब तक शुद्ध नहीं होगा कोई भी कामना रह गई, एक भी इच्छा, उसको श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर चॉकलेट खाने की भी इच्छा रह गई ना तो इस संसार में पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। सोच लो, अब लिस्ट बनाने शुरू कर दो आज से आप लोग, कौन कौन सी इच्छाएं बाकी हैं, और एक एक महीने में इच्छाओं को काटना शुरू करो, तभी तो शुद्ध भक्ति। कैसे पता ही नहीं काटोगे, कैसे जब पता ही नहीं होगा। कहते छह प्रकार के अनर्थ में से पांच प्रकार के अनर्थ आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो, सिर्फ एक मत्सर है जलन की भावना, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, पर पांच अनर्थों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता। अनर्थ निवृत्ति तभी होती है जब आपने श्रद्धा से साधु संग किया, साधु संग से भजन क्रिया किया, भजन करने के बाद में अनर्थों के बारे में जानना चाहिए। पहला अनर्थ है काम, काम मतलब मेरी इच्छाएं। तो अगर ये काम गलत है तो इसको भगवान ने बनाया क्यों? होता क्या है, भगवान ने जो बनाया उसको कहते हैं अर्थ, अर्थ मतलब जिसमें कोई मीनिंग है, अर्थपूर्ण काम भगवान ने बनाया अर्थ। लेकिन जब वो इस संसार में आता है और भौतिक रजोगुण तमोगुण सतोगुण में बंध जाता है तो वो अर्थ क्या बन जाता है, अनर्थ। जैसे पानी, अभी होली का समय आएगा, देखेंगे पानी जो है वो शुद्ध है, प्लेन है, लेकिन उसमें लाल रंग का रंग डाल दो तो कैसा हो जाता है, लाल पानी हो जाता है, जिस पर फेंकेंगे वो भी लाल। इसका मतलब पानी लाल नहीं था, पानी शुद्ध था, पानी में रंग मिलाते ही उसका परिवर्तन हो गया। ऐसे ही हम भी हैं, जब आए तो हमारी शुद्ध कामनाएं थी, शुद्ध क्रोध था, शुद्ध हमारा सब कुछ था, लेकिन वो इस संसार के रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में मिलकर क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। इसलिए वो अर्थ अनर्थ बन गया। और उसकी निवृत्ति करने का क्या मतलब है, क्या मेरी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, क्या मेरा क्रोध समाप्त हो जाएगा, नहीं, वो सब कुछ रहेगा लेकिन वो शुद्ध हो जाएगा। निवृत्ति मतलब अनर्थ अब अर्थपूर्ण बन जाएगा और वही निष्ठा कहलाती है। कैसे, इच्छा है किसी व्यक्ति की भगवान की सेवा करने की, कामना, और एक व्यक्ति की इच्छा है कि मेरे पास में बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा बंगला हो, बड़ा पोजिशन हो और सब कुछ अच्छा चले, ऐसी जो इच्छा है ये अपने सुख की कामना अनर्थ, भगवान के सुख की कामना अर्थ। काम लग गया भगवान की सेवा में। क्रोध, क्रोध कैसे लगा सकते भगवान की सेवा में, क्रोध लगा सकते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान के खिलाफ कुछ बोले, हमें आपके भगवान पे भरोसा नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ऐसे समय अपने क्रोध का इस्तेमाल करते हुए सिंह की तरह दहाड़ते हुए प्रचार करना चाहिए, अजी आप जानते क्या है शास्त्रों के बारे में, और फिर उसको शास्त्र पकड़ करने चाहिए, तब वहां पर आपका क्रोध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दस लोग मिलकर के एक भक्त को सता रहे हैं क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा, वो सहनशील है, तो आपको अपने क्रोध का इस्तेमाल करते उस भक्त की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। इसके उदाहरण कौन है, हनुमान जी। हनुमान इस पार से उस पार गए रामचंद्र जी के कहने पर, और उस पार कौन था, रावण। रावण के पास एक शांति दूत बनकर गए भगवान की पत्नी सीता मैया को मिलने के लिए। तो जब सीता मैया से मिलने के बाद पता चला अशोक वाटिका में उन्होंने सब कुछ तोड़फोड़ दिया है, तो हनुमान जी को पकड़ करके ले गए रावण के पास, कहा हे वानर ये कैसी काम कर रहे हो तुम, हमारी अशोक वाटिका तुमने पूरी तहस नहस कर दी है, फल इधर उधर फेंक दिए हैं, बहुत सारे राक्षसों का वध किया है, कौन हो तुम? कहा मैं राम का दूत हूं, हनुमान, उनका सेवक हूं। कहा अच्छा सेवक हो, तो जाकर के अपने राम से कह देना गलती ना करे लंका में आने की, क्योंकि मैं यहाँ पर त्रिलोक का स्वामी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, वो एक साधारण सा बालक है, वो क्या लड़ेगा मुझसे। तो अभी हनुमान को क्या करना चाहिए था, जी 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 बिल्कुल ऐसे ऐसे करना चाहिए। अगर चाहते हनुमान तो उसी समय रावण की गर्दन पकड़ के धड़ से अलग कर सकते थे, कर सकते थे, शक्तिशाली थे, पूर्ण भगवान की शक्ति थी उनके पास, भगवान के सेवक थे। लेकिन हनुमान ने क्या कहा, भगवान ने कहा देखते रहे, सहन करते रहे। लेकिन जब उनका मजाक उड़ाया गया, अरे बंदर है, अरे देखो इसकी कितनी लंबी पूंछ है, अरे देखो इसका मुंह कैसा है, अरे ये कहां से आया है, सब सहन किया। लेकिन जब उन्होंने राम के लिए बोलना प्रारंभ किया तब सहन नहीं हुआ, उनके शरीर में आग लगाते ही उनकी पूंछ में क्या हुआ, पूरी लंका को उन्होंने जला के राख कर दिया, और आकर के भगवान राम को बताया, भगवान मैंने ऐसा किया। भगवान बोले अरे इतना क्रोध की क्या आवश्यकता थी। तो बोले प्रभु मैं चाहता तो रावण का वध कर सकता था, पर रावण का वध मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं रावण का वध कर दूंगा तो आपका जो मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आप निकले ही अयोध्या से वनवास लेके रावण जैसे अतिताई का वध करने के लिए, तो मैं अपने मालिक के मिशन में या उनसे आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। देखा, राम के मारने से पहले हनुमान ने करके दिखाया, हनुमान इज द बेस्ट, ऐसी भावना नहीं थी। लेकिन हमारी अशुद्ध भावना है गुरु से आगे निकलना, टीचर से आगे निकलना, हमारे शिक्षक से आगे निकलना, ये एक अशुद्ध भावना है। शुद्ध भावना स्वामी से कभी आगे नहीं, नहीं। लोग तो और आगे निकल रहे हैं, नर ही नारायण है, नर नारायण, नर ही नारायण है, तो ये आगे निकलना तो हुआ। हनुमान कह रहे हैं नर कभी नारायण नहीं बन सकता, नारायण स्वामी है, नर सेवक है, सेवक और स्वामी समरूप नहीं हो सकते। जो ऐसी बातें करता है कि नर ही नारायण है तो वो भगवान के समान है, वो वैसा ही है जिस पर हनुमान क्रोध कर रहा है। रावण भी हनुमान के कह रहा था कि मैं राम के समरूप नहीं हूं, उनसे आगे बढ़ गया हूं, त्रिलोक का स्वामी हूं, वो मनुष्य, वो छोटा सा बालक क्या करेगा। लेकिन हनुमान ने अपने क्रोध का इस्तेमाल किया, पूरी लंका को जलाया। तो ऐसे अपने क्रोध का इस्तेमाल करके हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो कृष्ण या राम या भगवान के शास्त्रों के प्रति समर्पित नहीं है उसको हम समझा सकते हैं क्रोध का इस्तेमाल। क्रोध का मतलब ये नहीं होता है गुस्सा मार देना या गाली दे देना। क्रोध का मतलब है कि जो आपको ये आवेश आता है उस आवेश को प्रचार में लगाओ, 100 लोगों को बैठ करके बोलो कृष्ण ही भगवान है, ये क्रोध ही तो है, इतना आवेश। लेकिन इसको कृष्ण सेवा में लगाना तो ये एक अनर्थ कट गया आपका। जब कृष्ण सेवा, जब भी कोई आपको कुछ बोले अरे पागल हो, ऐसे हो वैसे हो, उस समय क्रोध किया तो आपने अपने सुख के लिए क्रोध किया, इसका मतलब अनर्थ में फंस रहे हो। लेकिन जब किसी ने कुछ बोला कृष्ण के लिए और आपने उसको समझाने के प्रयास, ये भी नहीं क्रोध करके आज तेरी बोलती बंद कर दूंगा, वो भावना भी नहीं, आज मैं बताऊंगा कृष्ण ही परम भगवान है, भगवान की सेवा, ये भावना जो है उसका क्रोध परिवर्तित, अनर्थ से अर्थ में बदल। काम क्रोध लोभ लालच, तो भक्त को लालच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कितने लोग मानते होना चाहिए लालच? नहीं होना चाहिए। आप लोग ये मानते हैं लालच नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? किस चीज का लालच होना चाहिए? कृष्ण भक्ति का लालच होना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ने का लालच होना चाहिए, भक्तों के संग का लालच होना चाहिए, प्रसाद का लालच होना चाहिए। अच्छा, जगन्नाथपुरी गए थे प्रसाद दो, मायापुर गए थे प्रसाद दो, लालच। लेकिन ये लालच भौतिक संसार के द्रव्य पदार्थों में नहीं होना चाहिए, दूसरे का पदार्थ जैसे होना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, चाणक्य पंडित कहते हैं दूसरे का धन, दूसरे का पैसा लोष्टवत, लोहे के समान, टुकड़े के समान समझ चाहिए, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, एक रुपया भी लो वापस ले जाओ, तुम्हारे एक रुपये के चक्कर में मुझे दोबारा जन्म में लेना पड़ेगा, 9 महीने माता की गर्भ में रहना पड़ेगा और पता नहीं कितने प्रकार के मुझे दुख सहने पड़ेंगे, 3 प्रकार के तापों से सहन करना पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए लोष्टवत, वापस, जो भगवान की इच्छा अनुसार मुझे प्राप्त होगा सफिशियंट है, नहीं चाहिए। ऐसी भावना, काम क्रोध लोभ मोह, आसक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अटैचमेंट मोह होना चाहिए, किससे होना चाहिए? कृष्ण से होना चाहिए। हम देखते हैं प्राय घरों पे लोगों के कुत्ता होता है, कुत्ते से इतने आसक्त होते हैं लोग, अगर कुत्ते को खाना ना मिले ना, वो कहीं पार्टी में होते ना, उनको इंतजार होता है घर पर, मेरा कुत्ता वेट कर रहा होगा, होता है कि नहीं? एक तो व्यक्ति मुझे भी मिले थे 2-3 दिन पहले, कुत्ता मर गया, तो इतना रो रहे थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सा प्रिय बंधु चला गया उनका। कह रहे जब मैं आता था तो पूरा लेट जाता था, पैरों को चाटता था, ऐसा वक्त था प्रभु जी जब सब छोड़ गए, ये कभी छोड़ के नहीं गया। मैंने कहा वो इसलिए नहीं छोड़ के गया, उसको और कोई रोटी देने वाला नहीं था इसलिए छोड़ के नहीं गया, लेकिन बहुत ही ज्यादा विलाप कर रहे थे, दुखी थे, रो रहे थे, भागवत सुनने नहीं आए, कृष्ण भक्ति करने नहीं आए, मंदिर नहीं आए, क्योंकि कुत्ता मर गया है। क्या ऐसी आसक्ति जो कुत्ते के प्रति हम रख सकते हैं DOG के प्रति, क्या वो उसको रिवर्स करके GOD के प्रति नहीं कर सकते कि कभी हमको भगवान से दूर किया जाए, हमारी आंखों में आंसू निकले, आज मंगलवार को मैं जा नहीं पाया, आज मैं जा नहीं पाया, सिर को पटके, पाषाण कुटीबो माथा, अपने माथे को पाषाण पत्थर पे मारने का प्रयास करें, ऐसा कभी होता है? तो ये सही माने में ये आ सकती है परिवर्तित करना, काम क्रोध लोभ मोह मद प्राइड। अभी प्राइड तो गंदी बात है, लेकिन कृष्ण भक्ति में प्राइड लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? कैसे लगाएंगे? प्राइड कर सकते हैं कि मैं ना कोई टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति नहीं हूं, मैं श्रील प्रभुपाद के मिशन का भक्त हूं, दिस इज प्राइड इन गुड सेंस, एक सही भावना का अहंकार. दो प्रकार के अहंकार है, एक मिथ्या अहंकार, एक शुद्ध अहंकार. मिथ्या अहंकार क्या है? क्या है मिथ्या अहंकार? और मिथ्या अहंकार क्या है हमारे भक्त? मैं शरीर हूं. यस, आई एम अ बॉडी. मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सोल विद द बॉडी इज फॉल्स ईगो. यही मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूं. अपने शरीर की स्थिति तो देखिए जरा कैसी है. 9 गेट बनाए भगवान ने हमारे शरीर में, और 9 गेट से जब भी निकलता है क्या निकलता है? आंखों से निकलता है तो क्या निकलता है? कीचड़ निकलता है ना. सुबह सुबह सो के उठते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, यहां से बच्चों के ज्यादा निकलता है. और जो माताएं वो लगाती हैं, क्या क्या लगाती हैं? काजल नहीं, और वो क्या बोलते हैं उसको, आईलाइनर. उनका ज्यादा निकलता है, सुबह सुबह निकलता है ना काला काला. यहाँ से आंसरोती भी तो यहां से निभाता है काला पानी. काला पानी की सजा लगती है इसे. तो आंखों से क्या निकल रहा है? कीचड़. कान में उंगली डाल के प्रसाद पा सकते हैं, क्योंकि कान में क्या निकल रहा है? नाक से क्या निकलता है? मुंह से क्या बाहर निकलता है? या तो थूक निकलता है, या ज्यादा देर कुछ बहुत ओवर ईटिंग हो जाए तो फिर क्या निकलता है? वॉमिटिंग, उल्टी होती है हमसे. ये तो बाहर आता है, तो मुंह से जब भी निकलेगा क्या निकलेगा? जाता तो अच्छा है मटर पनीर हलवा पूड़ी, निकलता क्या मुंह से? सोचिए. और आपके जननेंद्रियों से क्या निकलता है? मल और मूत्र. अब आप सोचिए कि किसी गेट से बार बार कुछ गंदा निकल रहा हो. 9 गेट दिए भगवान, इसके अलावा और कोई छिद्र नहीं है हमारे शरीर में. 9 गेट्स, 9 द्वारों का पिंजरा रहता पंछी कौन, उसमें कौन पंछी है? हम. ये पिंजरा है जिसमें 9 गेट बने. किसी भी गेट से आओ जाओ, आत्मा कहीं से भी आती जाती है. अब इस 9 द्वारों के पिंजरे में एक पंछी आत्मा रूपी रह रही है, तो पिंजरे के अंदर क्या भरा हुआ है? जो बाहर निकल रहा है गेट से क्या निकलता है? गंदगी. अंदर क्या भरा हुआ है? लेकिन इस गंदगी का एहसास नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि भगवान की एक विशेष कृपा है. भगवान ने हमारे शरीर पर एक चमड़ी दी है, ये चमड़ी. थैंक यू गॉड फॉर गिविंग द स्किन. भगवान आपका धन्यवाद, आपने चमड़ी दिया. चमड़ी के ऊपर एक कट लग जाता है ना कभी कभी, तो उस कट के ऊपर एक चीज आकर के बैठती है. कौन बैठती है? मक्खी, हाउस फ्लाई. मक्खी आकर के बैठती है, तो मक्खी कहां बैठती है? इसका मतलब आपके शरीर के अब 9 गेटों के अलावा एक और गेट बन गया चोट लगने से, और वहां से क्या निकल रहा है? गंदगी. इसीलिए मक्खी बैठ. भगवान की विशेष कृपा है कि गंदगी नहीं. अगर ये स्किन ना होती और आदमी चल रहा होता बिना स्किन के, कैसा होता? उड़ते उड़ते कौए और चील उठा करके ले जाते, देखो मेरा ब्रेड पकौड़ा जा रहा है, उठाओ इसे. भगवान की विशेष कृपा है. आदमी बोलता क्या दिया तूने मुझे ठाकुर, मैं तुझे किस लिए भजूं? अरे इसलिए भजले, तेरे शरीर के ऊपर क्या है? स्किन है, वरना खा जाते तुझे चील कर उठा करके, ब्रेड पकोड़ा समझ के. इसलिए धन्यवाद देते, इसलिए हरे कृष्णा कर ले. फिर भी नहीं करता आदमी, धन्यवाद नहीं देता. सोचिए आप, ऐसी स्थिति है. और देखिए कितना बुरा गति है पुरुष की, इंसान की, स्त्री की. बैल मर जाता है या भैंस मर जाती है तो उसकी चमड़ी निकाल करके क्या बनाते हैं? हाँ जी, जूते चप्पल. ऊंट मर जाता है तो उसके कैमल लेदर के बैग्स बनते हैं, लोग खरीद खरीद के लाते हैं. हाथी मर जाता है तो क्या निकालते हैं? दांत, उसकी चमड़ी. शेर मर जाता है तो खाल, है ना. डियर मर जाता है, हिरण, उसकी भी खाल निकालते हैं. यहां से कभी कभी कस्तूरी भी निकाल लेते हैं, कितना कुछ है. और आदमी मर जाता है तो क्या निकालते हैं? वो तो अभी निकालने लगे. और वो तो डॉक्टर हो आप लोग, मान जानते हो, सड़क पे कोई मर जाए कौन आइस निकालेगा? कैश निकाल लेंगे. हाँ. किसी काम नहीं आता शरीर. कहते हैं ना, मरा हाथी 10 लाख का, मरा हुआ इंसान 1 रुपए का भी नहीं है. हमारी जानवर से भी बुरी गति है, फिर भी हम जानवर से श्रेष्ठ अपने को मान. भगवान को धन्यवाद नहीं दे पाते, निष्ठावान भक्त नहीं बन पाते. शुद्ध भक्ति योग तक जाना है हमको उठ करके, क्योंकि किसी भी दिन भगवान की एक देखिए कैसी व्यवस्था है. 5 प्रकार के प्राण से भगवान ने इस आत्मा को, इन 9 द्वार खुले हुए हैं, और आत्मा कितनी है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा. आंख से तो छोटी है, नाक से तो छोटी है, कान से छोटी है, निकल नहीं सकती यहां से बाहर, यहां से निकल जाए यहां से निकल जाए, आपने कहा अच्छू आत्मा बाहर, ऐसे खुजली क्या आत्मा, अरे आ, गिर गया आत्मा गई बाहर। एनी टाइम इट कैन हैपन, आत्मा तो निकल सकती है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, इतनी छोटी सूक्ष्म स्थिति की आत्मा किसी भी द्वार से बाहर निकल सकती है, लेकिन वो निकल नहीं रही है। भगवान ने एक ऐसा प्राण बनाया, उस प्राण वायु के प्रेशर से वो आत्मा अपने स्थान पर खड़े होकर आपको चेतना दे रही है पूरे शरीर में, लेकिन समय आने पर निकलती है, प्राण वायु ढीली पड़ जाती है और वो एक द्वार से, किसी ना किसी एक द्वार से बाहर निकल जाती है। अनुभव करते हैं आत्मा के बाहर निकल जाने पर शरीर के अंदर से, कई लोग कहते हैं आंखें फटी की फटी रह गई, आंख से चली गई, नाक से कुछ निकल गया था, है ना, जीभ बाहर उल्टी कर रहे थे, अचानक से हार्ट अटैक हो गया, मुंह से निकल गई, कान से मैल निकला, या फिर मल मूत्र का त्याग कर दिया, जो भी स्थिति होती है अंतिम समय में उसी से मता लगाया जा सकता है, इस द्वार से आत्मा निकल कर चली। तो आप सोचिए जरा कितना, कितनी भगवान की महति कृपा है कि उन्होंने इन 9 द्वारों से ना निकल करके आत्मा को ऐसे बस टांग रखा है बीच में, किसी भी जगह से निकल सकती है वो कभी। इतने टेम्परेरी जगत में, इतने टेम्परेरी शरीर में हम फिर भी निष्ठावान नहीं है। निष्ठावान एक भक्त हुए हैं भगवान के, उनका नाम था गोरा कुमार, मराठी भक्त है। भगवान विठल नाथ की पूजा किया करते थे। भगवान विठल कैसे हैं? पंडरपुर नामक स्थान है महाराष्ट्र में, वहां पर कमर पर हाथ रख के भगवान खड़े हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। भगवान कहते हैं आने दो कोई भी प्रॉब्लम, मैं हूं ना, इसी करके इस कमर पे कब आदमी हाथ रखता है जब कहता है आई एम योर प्रोटेक्टर, मैं हूं तुम्हारा रक्षक, है ना। ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा हो ना तो आदमी तुरंत ही दो प्रकार के एक्शन करता है, या तो ऐसे ऐसे करता है या फिर ऐसे करके खड़ा हो जाता है। तो भगवान ऐसे खड़े हैं विठल के रूप में। विठल का मतलब है विट के ऊपर, ईंट के ऊपर जो खड़े हुए भगवान है। तो एक भक्त था पौंडरीक नाम का, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था और भगवान उसकी सेवा करते करते भी क्या करता था, मम अनुस्मरणम युद्ध चा, अपने सेवा करते करते सदा कृष्ण कीर्तन करता था। कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि किसी सेवा से अपना जी नहीं चुराता है और उसके बाद भी सदा मेरा स्मरण करता है, मैं जाऊंगा इसको दर्शन देने के लिए। भगवान आ गए, भगवान आए, भगवान बोले सेवा छोड़ो दर्शन करने आओ। कहा नहीं प्रभु, आपके दर्शन से अच्छी तो आपकी सेवा है, पर ये माता पिता जो तुमने दिए ना, मैं इनकी सेवा ये सोच के नहीं कर रहा हूँ कि मेरे माता पिता, ये सोच के कर रहा हूँ ये आप ही का अंश है और आपने मुझे दिया, जब तक इनके प्राण है मुझे अभी आप नहीं चाहिए, अभी मुझे इनकी सेवा करना है, लेकिन सदा आपका स्मरण बना रहेगा। भगवान आए, इंतजार किया, हे पुंडरीक बाहर निकलो, मैं आ गया हूं दर्शन देने। उसने भगवान के लिए एक ईंट भेज दिया, ईंट, गांव के गरीब थे, ईंट दे दिया, बोला इस पे बैठ जाओ, ईंट के ऊपर बैठ जाओ, सोफा तो था नहीं, मुड्डा था नहीं, चेयर थी नहीं, हम ईंट पे बैठ जाओ। तो उस ईंट पे भगवान खड़े हो गए, खड़े रहे खड़े रहे खड़े खड़े, कहते हैं भगवान जैसे कहते हैं ना इंतजार में, हम तो पत्थर हो गए, भगवान पत्थर बन गए, विग्रह बन गए, लेकिन भगवान गए नहीं। बोले कब निकलेगा मेरा भक्त, भक्त के दर्शन दिए बगैर मैं जा नहीं सकता, भक्त आ नहीं रहा, पता नहीं कौन सी सेवा कर रहा। रुक्मणी जी आई अमरावती से चलती हुई, महाराष्ट्र में एक स्थान है जहां उनका जन्म हुआ। रुक्मणी जी कहती है अरे द्वारका नाथ को तो रख लिया, मैं भी चले जाती हूँ। तो द्वारका नाथ को देखने के लिए जब रुक्मणी जी आई तो उसने एक और इंट फेंक दिया, मैया तुम भी बैठो अभी आता हूँ। मैया भी खड़ी खड़ी वहां पर, जैसे कहते हैं समय के इंतजार में पत्थर बन गए। तो विठल नाथ आज भी वैसे ही ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं भगवान और इंतजार कर रहे हैं कब मेरा भक्त मेरे लिए आएगा। तो ऐसे विठल नाथ के प्रति ऐसे भक्त हैं, 250-250 किलोमीटर हर साल यात्रा करते, डिंडी यात्रा करते, पैदल चलते हैं उस भगवान से मिलने के लिए। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा, भक्तों से, क्या आपने भगवान को देखा है जो हर साल पागलों की तरह 250 किलोमीटर पैदल चलते हुए जाते हैं, कभी देखा भगवान को? भक्त बोले हमने तो नहीं देखा, लेकिन हमारे यहाँ के संतों ने देखा है, हमारे संत हुए हैं आचार्य और हमको उनकी वाणी पर इतना भरोसा है। कहा कितना भरोसा? कहा हम तो फिर भी संत हैं, भक्त हैं, कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते सड़क पे भौंकने वाले, वो एक चोर को एक कुत्ता देख ले और बोल दे सारे कुत्ते क्या करने लग जाते हैं, अपनी अपनी गलियां भौंक लेते हैं, इतना इको साउंड करते हैं चोर घबरा के भाग जाए। तो बोले वो कुत्ते को दूसरे कुत्ते पे भरोसा होता है, वो कुत्ता है, लेकिन हम कैसे हैं? भक्त, और हमको दूसरे भक्त पे भरोसा नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा ज्ञानेश्वर ने कहा, नामदेव ने कहा, तुकाराम ने कहा, गोरा कुमार ने कहा कि विठ्ठल और कोई नहीं साक्षात कृष्ण। हमें किसने कहा? प्रभुपाद ने कहा, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, यही हरि नाम आपको क्या कर देगा, सारे भव बंधन से तार देगा, शुद्ध भक्ति प्रदान करेगा। भरोसा नहीं है क्यों? हम तो उस जानवर से भी गए गुजरी स्थिति में, हमें भरोसा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और भक्ति की बातें करें, श्रद्धा पहली सीढ़ी है। तो ऐसे गोरा कुमार था, उसको श्रद्धा थी अपने भगवान के प्रति। उसने कहा, मेरे आचार्यों ने कहा ये भगवान है। कुमार था, घड़े बनाता था खाली, और घड़े बनाते बनाते क्या करता है, भगवान को सेवा करता है, और जो भी छोटी मोटी कमाई आती है उससे मटके बना करके लोगों को बेचता है, और उसी से भगवान की आधी पैसे से भगवान की सेवा करता है। भगवान की माला चढ़ाना, भगवान के वस्त्र खरीदना, भगवान को भोग लगाना, पूरे गांव में प्रसाद बांटना, यही उसका सारा काम था। ऐसा गोरा कुमार, गोरा नाम था उसका। गोरा नाम क्यों था? गौरा होता है ना, जैसे गौरा, ग से गोविंद, रा से राधा रानी, गौरा 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 गौर हरि है ना, गोविंद और राधा रानी, ऐसे वो सदा गोरा। उसका नाम उसके माता पिता ने दिया था। बहुत गरीब था, घर में बच्चा नहीं था, तो एक बार उनके घर में एक बच्चा आया, नन्ना मुन्ना, 3 महीने का बच्चा था। उनकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न थी कि हमारे घर बच्चा हो गया है, और बोल रही थी इसका नामकरण करिए, जाइए विठल नाथ को बोलिए, पंडरपुर में जाकर के वहां के किसी पुजारी से इसका नामकरण कराइए। लेकिन ये हमेशा समाधि में रहता था, बोला समय नहीं है जाने का भगवान के पास में, उन्होंने सेवा जो दी है, सेवा इंपॉर्टेंट है, सेवा करूंगा उनका कीर्तन करते घर। तो मटके बनाने के लिए मिट्टी को रौंदना होता है, देखा है आपने, कुमार लोग ऐसे पैर से रौंदते हैं। रौंद रहा था और अपनी समाधि में चला गया, क्या बोलने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समाधि में लीन था और ये भूल गया कि मेरा बच्चा जो घर में टहलते टहलते उसके चरणों के पैर के नीचे आ गया। जब पांव के नीचे आ गया तो घबरा गया, देखा कि क्या चीज है, लेकिन जब तक वो देखता उसे एहसास होता तब तक तो बच्चे के प्राण निकल गए थे। अभी पत्नी तो बोली कि मेरा तो हालत खराब हो गई है कि बच्चा मर गया घर के अंदर, ये कैसी निष्ठा है तुम्हारी भगवान के प्रति। कहा वो जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा, इसमें क्या अच्छा, बच्चा मर गया इसमें कोई अच्छा है। कहा तुम्हारी दृष्टि ऐसी नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा ऐसी नहीं, तुम बात मत करो, दूर चले जाओ, पत्नी को दूर हटा दो। कहा हमारे घर में दूसरा बच्चा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा ली थी जीवन में करूंगा तुम्हारा स्पर्श तो सिर्फ एक पुत्र के लिए, उसके बाद कभी स्पर्श नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपना भजन करना। इस प्रकार की गृहस्थी में ब्रह्मचारी जैसा जीवन जी रहा था। उसकी बहन, मतलब उसकी जो पत्नी थी, उसने अपनी बहन से कहा ऐसा ऐसा हुआ। बहन बोलती है ठीक है, मैं आपकी गृहस्थ के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हूं, आपके पति से मैं विवाह। उन्होंने स्पर्श करने को मना किया, आपको मुझे तो नहीं, मैं आपके घर में संतान लेके आऊंगी, आप दुखी मत होइए। सारे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, कैसा भक्त है, अपने बच्चे की जान ले ली इसने। लेकिन वो सब सहन करता रहा, सहनशील रहा। दूसरा विवाह हुआ तो उनके ससुर कहते हैं, जैसा तुमने मेरी बेटी को रखा उसी दृष्टि से मेरी दूसरी बेटी को भी रखना, जैसे एक आदमी दोनों आंखों में कोई भेद नहीं करता, इनमें भेद मत करना। ये बोला लो हो गया काम, पहले वाली को स्पर्श करने को मना किया था, इन्होंने कहा दोनों में भेद मत करना, मतलब इसको भी स्पर्श नहीं करना, स्पर्श नहीं करेंगे तो संतान कैसे होगी। दोनों को नमस्ते करके आकर के अपने भजन में लग गया। अब सब लोग बड़े परेशान थे कि ये कैसा दृढ़ व्यक्ति है, भगवान के सामने जो भी चीज बोल देता है उससे हटता ही नहीं है। हम भगवान के सामने हर बार हर मंगलवार को बोल के जाते हैं, माला करेंगे फिर छोड़ देते हैं, चिकिता पढ़ेंगे फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि भक्त नहीं है, हम झूठ बोलते हैं। लेकिन गोरे ने जो बोल दिया वो करता था, बोला नहीं स्पर्श करूंगा। तुम्हारे पिताजी ने बोला कृष्ण की तुम्हें तुम्हारे को कृष्ण की कसम, मेरी दोनों बेटियों में कोई भेद मत करना, कोई भेद नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में भगवान को आना पड़ा उसके घर पे। एक दिन रात्रि में वो सो रहा था तो दोनों बहनों ने कहा हम दोनों स्पर्श कर लेते हैं इसका, स्पर्श कर लेंगे इसका नियम टूट जाएगा, फिर ये भी क्या करेगा, ग्रसित हो जाएगा हमारी माया में। दोनों पत्नियों ने आकर के उसका एक एक हाथ स्पर्श कर लिया, वो नींद से उठा और देखा दोनों औरतों ने छू लिया, रोने लगा, कहता ये क्या किया मैंने, तुम दोनों ने मेरे को छू लिया, भगवान क्या कहेंगे, मैंने वादा किया था भगवान अभी कभी इन हाथों से स्त्री स्पर्श नहीं करूंगा, जाकर के दोनों हाथों को काट दिया। अब काट दिया तो घर में खाने के भी लाले पड़ गए और नीचे स्थिति आ गई, मटका बनाने के लिए हाथ ही नहीं बचे। अब भगवान ने कहा अब तो मुझे आना पड़ेगा। रुक्मणी जी बोली द्वारकाधीश चलो इस घर में, बहुत दिन हो गए आप तो ये बहुत बुरी स्थिति में, आप आपकी आवश्यकता है। द्वारकाधीश चले आए, द्वारकाधीश एक मटका बनाने वाले कारीगर बन के आए, मटके बनाने प्रारंभ कर दिए और गोरा कुमार से कहते हैं कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ रोटी चाहिए, हमारे मालिक ने हमको निकाल दिया था। कहा तुम जो मटके बनाते हो अजीब मटके हैं, ये टूटते भी नहीं है। कहा ये बात तो ठीक है, हमारे बड़े स्पेशल मटके, पर हमारे मालिक को समझ नहीं आया, उसने निकाल दिया। एक दिन उन्होंने ऐसे बोला कि चलो चलो, मटके बनाने वाले कारीगर ने, हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग जाएंगे भगवान की सेवा करने के लिए पंडरपुर। कहां जाएंगे, पंडरपुर। सारे कीर्तन करते हुए पंडरपुर चल दिए, पंडरपुर पहुंचे, भगवान का ऐसे विग्रह था, वहां सब भक्त बैठे थे और एक भक्त वहां पर जोर जोर से कीर्तन कर रहा था, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ऐसे कीर्तन कर रहा था। तो इस प्रकार से जब कीर्तन चल रहा था, कीर्तन में ताली बजाने के लिए कहा गया सभी भक्तों को, हाथ उठाइए ताली बजाइए हरी बोल। तो सारे भक्तों ने जब ऐसे ताली बजाई, गोरा कुमार सोचता है मेरे तो हाथ ही नहीं है, तो गोरा कुमार ने अपने उन्हीं हाथों से ताली बजाना प्रारंभ किया और एक अविस्मरणीय घटना हो गई। वहीं पर देखते देखते गोरा कुमार के हाथ निकल आए, हाथ आ गए तो भगवान को धन्यवाद देने के लिए गया। जब भगवान के मंदिर में गया और भगवान के पांव को छुआ तो भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिया, और वो भगवान कोई और नहीं, उसके घर में काम करने वाले कारीगर थे। बोला अरे तुम यहाँ कैसे, कहा मैं विट्ठल नाथ हूं जो तुम्हारे घर में सेवा करता था। तो उसकी पत्नी रोने लगी, कहती है प्रभु आपने हमको इतने दुख दिए, अगर आप साक्षात हमारे घर में तो हमारा पुत्र कैसे समाप्त हो गया। कहा कैसी बात करती हो, गोरा कुमार जैसा भक्त तो वहां कोई अनिष्ट हो सकता है, दिखने के लिए अनिष्ट है लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि भगवान है। जिस दिन ये बच्चा मिट्टी में आया, क्योंकि मैं कण कण में विराजमान हूं, विश्व के हर अणु में विराजमान हूं, इसलिए मैं विष्णु हूं, मैंने उस बच्चे को कण के अंदर ही अदृश्य कर दिया था और लाकर के रुक्मणी को प्रदान किया। देखो अभी तुम्हारा बच्चा वैसा का वैसा हमारे पास है। रुक्मणी मैया ने उसके हाथ में, उसकी पत्नी के हाथ में कहा ये लो तुम्हारा पुत्र, वापिस ले जाओ। पुत्र भी मिला, हाथ भी मिले, लेकिन दृढ़ता के कारण, निष्ठा के कारण। तो आज हमारे श्लोक से हमें यही शिक्षा लेनी है, कैसा भक्त बनने का प्रयास करें, निष्ठावान। इतने जल्दी कच्चे मत पड़ जाइए, किसी ने कहा अरे छोड़ो हरे कृष्णा में क्या है, चलो आओ हमारे बाबा जी से मिलवा के लाते हैं, जाइए आप। लेकिन निष्ठावान रहेंगे ना आप, देखिए ऐसे ऐसी चीजें होंगी जीवन में, अविस्मरणीय, भूली नहीं जाएंगी आपकी। हरे कृष्णा।